ವಂದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ವಂದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ವಂದೇ ಭೋಗಿಲಾಂಛಿತ ಯೋಗಿವಾಂಛಿತ ಚರಣ ಪದಂ ವಂದೇ ವಂದೇ.
ಇಧರ್ ಹೇರೋತ್ ಅಬ್ ತಕ್ ಉನ್ ಜ್ಯೋತಿಯೋ ಕಾ ರಾಸ್ತಾ ದೇಖ್ ರಹಾ ಥಾ, ಮಗರ್ ಜಬ್ ವೇ ನಾ ಪಹುಂಚೆ ತೋ ಕ್ರೋಧ್ ಮೇ ಹೇರೋತ್ ಸೋಚನೆ ಲಗಾ,
ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಇನ್ ರಾಜಾಓ ನೇ ಮುಝೆ ಧೋಕಾ ದಿಯಾ ಹೈ, ಹೋ ನಾ ಹೋ ಯೇ ಮುಝ್ಸೆ ಅಧಿಕಾರ ಔರ್ ಮೇರಾ ರಾಜ್ಯ ಛೀನ್ನೆ ಕಾ ಕೋಯಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಮಗರ್ ಮುಝೆ ಖಾಮೋಶ್ ನಹೀ ಬೈಠನಾ ಹೈ, ಕುಛ್ ನಾ ಕುಛ್ ಯುಕ್ತಿ ಜರೂರ್ ಸೋಚ್ ನಿಕಾಲ್ನಿ ಹೈ, ಪರ್ ಕೈಸಿ ಯುಕ್ತಿ? ಹತ್ಯಾ, ಪ್ಯಾದೋ ಬೇತ್ಲೆಹಮ್ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕೆ ಸಭಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋ ಮೇ ಜಾಕರ್ ದೋ ಬರಸ್ ತಥಾ ಉಸ್ಸೆ ಛೋಟೆ ಸಭಿ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಮರ್ವಾ ಡಾಲೋ, ಔರ್ ಯಾದ್ ರಹೇ ಏಕ್ ಭೀ ಬಾಲಕ್ ನ ಬಚನೆ ಪಾಯೆ ಯಹೂದಿಯೋ ಕಾ ರಾಜಾ.
ಯಹಾಂ ಹೆರೋದೇಸ್ ಕಾ ಸತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನ ಸರ್ ಚಡ್ಕರ್ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಥಾ, ತೋ ವಹೀ ವಿನಮ್ರ ಔರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಂಪತಿ ಮರಿಯಮ್ ಔರ್ ಯೂಸುಫ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮೇ ಮಗನ್ ಥೇ. ತಭಿ
ಯೂಸುಫ್ ಉಠೋ, ಬಾಲಕ್ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಮಾತಾ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಮಿಶ್ರ ದೇಶ್ ಚಲೇ ಜಾಓ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹೇರೋದ್ ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ಮಾರ್ ಡಾಲ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ, ಔರ್ ತಬ್ ತಕ್ ಮಿಶ್ರ ಮೇ ರಹೋ ಜಬ್ ತಕ್ ಮೈ ನ ಕಹೂಂ.
ಮರಿಯಮ್ ಮರಿಯಮ್ ಹಮೇ ತುರಂತ ಯಹಾಂ ಸೆ ಭಾಗ್ ನಿಕಲ್ನಾ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸ್ವರ್ಗದೂತ್ ನೇ ಮುಜ್ಸೆ ಕಹಾ ಕಿ ಹೇರೋದ್ ಬಚ್ಚೆ ಕಿ ಜಾನ್ ಲೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ. ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿ, ತಯಾರಿ ಕರೋ ಕಿ ತುಮ್ ಇಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಕಾ ಕಷ್ಟ ಸಹನ್ ಕರ್ ಸಕೋ, ಔರ್ ಮುಝೆ ಬತಾಓ ಕಿ ಮೈ ಉನ್ಹೇ ಕಮ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಕೈಸೆ ಮದದ್ ಕರೂಂ.
ಮೇರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯದಿ ಹಮೇ ಈಶ್ವರ್ ಸೆ ಇತನೆ ವರದಾನ್ ಔರ್ ಕೃಪಾಯೆ ಮಿಲಿ ಹೈ ತೋ ಹಮೇ ಥೋಡಿ ಬಹುತ್ ಕಠಿನಾಯಿ ಖುಷಿ ಸೆ ಝೇಲ್ನಿ ಹೋಗಿ. ಹಮ್ ಜಹಾಂ ಭಿ ಜಾಯೆಂಗೆ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಈಶ್ವರ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜಾಯೆಂಗೆ, ವಹೀ ಹಮಾರೇ ರಕ್ಷಕ್ ವಹೀ ಹಮಾರಾ ಶರಣ ಸ್ಥಲ ಹೈ, ಚಲೋ ಹಮ್ ಉನ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರಿ ಕರೇ.
ಹಾಂ ಮರಿಯಮ್.
राजा हेरोदेस की क्रूरता से बच ये दंपत्ति भाग निकले. उन्हें चिंता नहीं थी कि सफर कितना कठिन होगा, उन्हें फिक्र थी तो मात्र प्रभु के बेटे के अमूल्य जीवन की. राजा हेरोद उन कई सरकारी अधिकारियों व शासकों के मात्र उदाहरण थे जिन्हें अपने अधिकार को लेकर हमेशा भय बना रहता है. वे ये नहीं सोचते कि उनके अधिकार व सत्ता की ये भूख कितने मासूम कितने निर्दोषों का रक्त पी रही है, लेकिन फिर भी उनका ये अन्याय ये रक्तपात ईश्वर की योजना पूरी होने से कैसे रोक सकता है. बेतलहम में माताओं का करुण क्रंदन सुनाई पड़ रहा था. राजा के सैनिक इन निर्दोष बच्चों को उनकी गोद से छीन छीन कर मौत के घाट उतार रहे थे. ओह कितना करुण दृश्य था ये, अपनी ही संतान का बिना किसी अपराध के ये वध. किससे विनय करें, कौन पुकार सुने, जब सबके सिर पर राजा के क्रोध और ईर्ष्या की तलवार लटकी हो. माताओं के इस क्रंदन ने नबी यरमाया कि ये भविष्यवाणी पूरी कर दी. रामा में रुदन और विलाप सुनाई दिया. राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और किसी को अपने आंसू पोंछने नहीं देती क्योंकि वे अब नहीं रहे. उधर मरियम और यूसुफ बच तो निकले मगर वे उन बच्चों को नहीं भूले जिन्हें उनके बेटे के कारण अपनी आहुति देनी पड़ी थी। मरियम व यूसुफ ने उन मासूम बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की।
मरियम, बढ़ई का काम तो मैं कर ही रहा हूं, मगर मुझे दुख है कि तुम दोनों को हर तरह की सुविधा नहीं दे पा रहा हूं। यहां जो काम करवाने आते हैं उनका व्यवहार भी मेरे प्रति ठीक नहीं रहता है। मेरे साथ विदेशी और एक शरणार्थी का सा व्यवहार करते हैं।
निराश न हो यूसुफ, हम इस गरीबी में भी संतुष्टि और खुशी से जी लेंगे। और हाँ, अब मैं भी आपके काम में हाथ बटाया करूंगी। मुझे सिलाई कढ़ाई का ज्ञान है, मैं यहाँ आसपास की महिलाओं के लिए काम किया करूंगी।
लेकिन मरियम।
अरे तुम चिंता मत करो यूसुफ।
कड़ी मेहनत करने के बाद जब वे नन्हे ईसा की ओर देखते या उसे गोद में उठाते तो उनकी थकान व दर्द पल भर में दूर हो जाते और वे उसी के प्यार के लिए सारी कठिनाई हंसते मुस्कुराते झेल लेते। बाल ईसा अपने माता पिता के साथ प्रार्थना में ही नहीं बल्कि उनके घरेलू कामकाज में भी सहायता करता। यूसुफ को बड़ाईगिरी में मदद देता तो माँ मरियम द्वारा सिले वस्त्र ले जाकर ग्राहकों को देता और रास्ते में आते जाते वक्त लोगों की पीड़ा व दर्द देखकर दुखी भी होता। बच्चों के बीच ईसा अपनी दयालुता और नेतृत्व क्षमता के कारण बहुत प्रिय और प्रसिद्ध था। सिर्फ खेलकूद ही नहीं, वे अपने नन्हे दोस्तों को ईश्वर के ज्ञान तथा सदाचार की अनौपचारिक शिक्षाएं भी देता। माता पिता के सदाचरण और विनम्र व्यवहार तथा बालक की अद्भुत क्षमता ने शीघ्र ही मिस्रियों के बीच अपनी जान पहचान बना ली। लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करते और बुरे कर्म त्याग अच्छा जीवन जीने का प्रण कर लेते। मगर कुछ ही वर्षों बाद एक रोज
यूसुफ।
हाँ।
उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए।
इज़राइल?
क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर चुके हैं।
ओह मरियम, मरियम। ईसा, चलो हमें अपने देश इज़राइल चलना होगा, क्योंकि हेरोद की मृत्यु हो गई है और अब हमें कोई खतरा नहीं है। प्रभु के दूत ने मुझसे कहा है कि मैं तुम दोनों को इज़राइल ले जाऊं।
हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने में देरी नहीं करनी चाहिए।
बिना देरी किए वे तीनों इज़राइल अपने पूर्वजों के देश की ओर रवाना हो गए। उनके आसपास के यहूदी व मिस्री मित्र उनके विछोह से दुखी थे, मगर ईश्वर की इच्छा वे कैसे टाल सकती थी। यूसुफ अपने वफादार गधे पर मरियम और बालक ईसा को बैठाकर अपने पूर्वजों के देश चल पड़े। जब वे फिलिस्तीन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नया राजा आर्खेलोस राज्य कर रहा है और वो बहुत क्रूर है। तो यूसुफ वहां ठहरने से भयभीत था, मगर स्वर्गदूत की प्रेरणा से वो अपने पुराने घर नाजरेत में आ गए। यूसुफ की चचेरी बहन उनकी उपस्थिति में उस घर की देखरेख कर रही थी। जब उसने इन तीनों को सुरक्षित देखा तो जमीन पर सर टेक कर प्रभु को धन्यवाद दिया। जीवन एक बार फिर अपने पुराने तरीके से चलने लगा। यूसुफ बड़ाईगिरी में व्यस्त तो मरियम घरेलू कामकाज के साथ साथ प्रार्थना में, और बाल ईसा न सिर्फ माता पिता के काम में मदद करते मगर अपने मित्रों के साथ भी समय बिताते। उनके आसपास के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। खेलकूद के साथ ही वे बच्चों के साथ प्रार्थना भी करते और बच्चों को माता पिता का आज्ञाकारी बनने की सलाह देते।